वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिचनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे निर्विशेष जय श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण पिछले मंगलवार को हम लोग चर्चा कर रहे थे कर्ण के बारे में। बहुत ही विवादास्पद चरित्र है। हम लोगों ने उसके जन्म के विषय में सुना, किस प्रकार कर्ण का जन्म हुआ और कैसे कर्ण धीरे धीरे उसने शिक्षा प्राप्त की, अपने गुरु के पास गए और फिर आगे चलकर किस प्रकार दुर्योधन से उनकी मित्रता हुई और फिर दुर्योधन से मित्रता के बाद कैसे पांडवों से वो द्वेष करने लगे और फिर आगे चलकर बहुत से ऐसे प्रसंगों में उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया जो अधर्म थे। और जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए तो उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया कर्ण को, कर्ण के जन्म का रहस्य बतलाया, लेकिन कर्ण ने सब जानते हुए, कर्ण ने यह स्वीकार किया कि कृष्ण भगवान हैं, कर्ण ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी हार निश्चित है, उसकी पराजय होगी, लेकिन फिर भी अपनी मित्रता दुर्योधन के प्रति उसने त्यागी नहीं। और इसीलिए श्री कृष्ण ने उसको कुछ कहा नहीं, श्री कृष्ण चले गए। किसी ने यह प्रश्न किया था क्लास के बाद कि भले ही उसने कृष्ण की बात सुनी नहीं, युधिष्ठिर का साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी अपनी मित्रता को बनाए रखा, तो उस वफादारी की तो हमें वफादारी का गुणगान तो करना चाहिए कि कम से कम कितना वफादार मित्र था कि उसने अपनी मित्रता के सामने सारे राज्य को त्याग दिया। कृष्ण ने कहा था कि जब तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दोगे, युधिष्ठिर को राज्य मिलेगा तो युधिष्ठिर पूरा राज्य तुम्हें दे देगा। तो सारे राज्य को त्याग दिया, धन ऐश्वर्य अपने प्राण तक त्यागने के लिए तैयार हुआ केवल मित्रता बनाए रखने के लिए। तो प्रश्न ये था कि हमें उसका तो गुणगान, उस गुण का तो गुणगान करना चाहिए कि उसके अंदर अच्छा गुण था, भले ही वो अधर्मी का साथ दे रहा था। तो उत्तर ये था कि अगर कोई व्यक्ति हत्याएं करता है, कोई व्यक्ति चोर है, डाकू है, और वो कुछ पैसे देकर किसी व्यक्ति को बड़ा करता है या कुछ पैसे देकर मदद करता है, तो फिर क्या इस व्यक्ति के लिए बड़ा होने के बाद चोरी करना, डाका डालना, क्योंकि वो व्यक्ति चोर है, डाका डालता है, तो क्या वो धर्म हो जाएगा? क्या वो उसकी वफादारी होगी? क्या वो उसकी मित्रता होगी? कैसे हम लोग मान सकते हैं? अगर कोई अधर्मी व्यक्ति है, अगर जो पापी व्यक्ति है, अगर उसके द्वारा किए गए किसी एहसान को चुकाने के लिए हम पाप करते हैं, तो प्रकृति हमें छोड़ेगी नहीं, केवल इसलिए कि हमने वो पाप अपनी मित्रता के चलते हुए किया। तो इसी प्रकार भले ही कर्ण ने अपनी मित्रता के चलते कृष्ण का साथ नहीं दिया, दुर्योधन का साथ दिया, लेकिन उसको धर्म नहीं कह सकते, उसको नैतिकता भी नहीं कह सकते, वो अधर्मी है, वो पाप है। शास्त्रों में दो शब्द आते हैं, पाप और पुण्य। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गतिहि। वो कहते हैं कि हमें जानना चाहिए कर्म क्या है, विकर्म क्या है। तो पाप और पुण्य ये क्या है? साधारण भाषा में कहें तो पाप वो कार्य हैं जो बुरे माने जाते हैं, शास्त्रों में मना है, और पुण्य वो कार्य है जो शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित है और जो अच्छे कार्य माने जाते हैं। ये हमारी सरल परिभाषा है अभी तक जो हम जानते हैं पाप और पुण्य की। लेकिन अगर भक्ति की दृष्टि से देखें तो जो भी कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ना किया गया हो वो पाप है। फिर चाहे बाहरी दृष्टि में उसको पुण्य कहा जाए, फिर चाहे उसको अच्छे कार्य किए कहे जाए, फिर चाहे उसको किसी की मदद कहा जाए, या जो भी नाम आप दे दीजिए, चाहे मित्रता कहें, लेकिन ये सब पाप है। क्योंकि भक्ति के संदर्भ में हम देखते हैं कि केवल एक ही चीज पुण्य कहला सकती है या अच्छी कहलाई जाती है, और वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति या भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य। अन्यथा बाकी सारे कार्य जो तथाकथित पुण्य की श्रेणी में आते हैं वो पाप हैं, अगर वो कृष्ण से संबंधित नहीं है। तो अब अगर इस दृष्टि से हम देखें तो फिर कर्ण ने क्या किया? भले अपनी मित्रता को बनाए रखा लेकिन कृष्ण का विरोध किया, कृष्ण को त्याग दिया, कृष्ण के द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए एक दृष्टि में, क्योंकि उसने ऐसे अधर्मी का साथ दिया जो केवल अधर्मी ही नहीं बहुत बड़ा आततायी था। भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद आततायी शब्द की व्याख्या देते हैं और बताते हैं कि कितने प्रकार के आततायी होते हैं, और अगर उस परिभाषा को देखें, उस तात्पर्य को देखें, तो उसके अनुसार दुर्योधन के अंदर वो सारे दुर्गुण थे। और प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे आतताई का तुरंत वध करना चाहिए, इससे कोई पाप नहीं लगता। प्रभुपाद समझाते हैं कि पहले आतताई होते हैं जो जहर देते हैं, उनको आतताई कहा जाता है। दुर्योधन ने जहर दिया, बचपन से प्रयास किया, छोटे से थे भीम तो उस समय उनको जहर देकर मारने का प्रयास किया, तो इसीलिए आतताइयों की श्रेणी में वो आया। दूसरे प्रकार के आतताई होते हैं जो घर में आग लगाते हैं, दुर्योधन ने लाक्षाग्रह अर्थात एक ऐसा घर बनवाया पांडवों के लिए खुद बड़े प्रेम से कि उसमें पांडव रहें, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था, उसमें आग लगा के उनको जला दे। लाक्ष का बना हुआ था, अर्थात जरा सी अग्नि लगते ही सारा गल सारा जो घर है वो जलकर समाप्त हो जाए। तो इसीलिए जहर देने वाले को, अग्नि लगाने वाले को, जो घर में अग्नि लगाता है और जो खतरनाक शस्त्रों से आक्रमण करे उसको भी मार सकते हैं। और हम देखते हैं कि कई स्थानों पर प्रयास किया दुर्योधन ने पांडवों को मारने का, विराट राजा के वहां भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह वो चाहता था कि वो मर जाए। तो इसलिए ऐसे ये तीन प्रकार के आतताई हुए। चौथे प्रकार के होते हैं जो दूसरे का धन धोखे से या ठगी से ले लेते हैं, और द्यूत क्रीड़ा में दुर्योधन ने यही किया। सारा पांडवों का धन धोखे से ले लिया, ठग लिया उनको, खुद नहीं खेला लेकिन शकुनी ने खेला, और शकुनी बड़े दक्ष थे धोखा देने में। तो इसलिए दुर्योधन ने जहर दिया, आग लगाई, शस्त्रों से आक्रमण किया, धोखे से धन ले लिया। पांचवें प्रकार के आतताई होते हैं जो दूसरे की भूमि पर कब्जा जमा लेते हैं, और हम लोग देखते हैं कि राज्य दरअसल दिया गया था युधिष्ठिर को, लेकिन दुर्योधन ने वो भी कब्जे में ले लिया। और जब उससे वापस मांगा कृष्ण ने शांति दूत के रूप में कि थोड़ा सा दे दो, पांच गांव दे दो, लेकिन नहीं दिया। और छठे प्रकार के आतताई होते हैं जो दूसरे की पत्नी का हरण कर लेते हैं, जैसे रावण। सो दुर्योधन ने दूसरे की पत्नी का हरण तो नहीं किया, लेकिन उससे भी बड़ा पाप किया, दूसरे की पत्नी को सबके सामने निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। तो देखिए, छह प्रकार के आतताई भगवत गीता में प्रभुपाद समझाते हैं, और ये छहों प्रकार दुर्योधन पर ठीक बैठते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि इनमें से किसी भी एक की भी तुरंत हत्या कर देनी चाहिए, उसे कोई पाप नहीं लगता। और यहां तो छहों के छहों पाप दुर्योधन ने किए पांडवों के प्रति। और फिर ऐसे अधर्मी का जो साथ, और इन सारे स्थानों पर कर्ण ने उनका साथ दिया, आगे चलकर भगवान उसको याद दिलाएंगे, कृष्ण याद दिलाएंगे जब वो धार्मिक सिद्धांतों की बात करेंगे। तो ऐसे आतताइयों का साथ देने से, ऐसे अधर्मियों का साथ देने के कारण कर्ण भी अधर्मी ही कहलाएगा, क्योंकि उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया हो, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो हम लोग चर्चा यहां तक हमने की थी कि किस प्रकार द्वैत वन में जब एक बार पांडवों को, ये भी जो द्वैत वन जाना था ये भी सुझाव कर्ण का ही था। तो द्वैत वन में गए, वहां पर अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शित किया, और कैसे दुर्योधन, उसकी हार हुई, बड़ा अपमान हुआ, और दुर्योधन ध्यान मग्न हो गया कि अब मैं नहीं जाऊंगा वापस राज्य, और फिर कैसे असुर उसको पाताल ले गए, ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ये कर्ण कौन था। जैसे हम लोगों ने पिछली बार थोड़ा सा सुना था कि नरकासुर का, नरकासुर की आत्मा कर्ण में प्रवेश कर गई थी, जो विरोध कर रही थी, विद्रोह कर रही थी, कृष्ण के सामने जाने नहीं दे रही थी, या कृष्ण को समर्पण करने नहीं दे रही थी। जानते हुए भी देखिए कैसी विडंबना थी। कर्ण ने सब कुछ कहा, सबसे पहले कर्ण ने स्वीकार किया कृष्ण के सामने कि यस, आप भगवान हैं, मैं जानता हूं, आप परम पुरुष हैं, लेकिन ये जानते हुए भी समर्पण नहीं किया। वो जानता था मैं हार जाऊंगा, उसने कहा मैं जानता हूं मेरी मृत्यु होगी, लेकिन फिर भी समर्पण नहीं किया। तो ये बहुत विशेष सिद्धांत है हम सबके लिए। भक्ति में आने पर ग्रंथों के द्वारा, आचार्यों की वाणी के द्वारा हम लोग ये समझ जाते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, जैसे कर्ण भी समझ गया था, लेकिन फिर भी समर्पण नहीं करते। हमारी आसक्तियां, हमारी भोग वृत्ति रोक देती है हमें कृष्ण को समर्पण करने में। तो कर्ण, जैसे हम लोगों ने सुना कि नरकासुर की उसमें आत्मा थी जो विरोध कर रही थी, और अगर कर्ण का पूर्व जन्म देखें कि वो कौन था, बहुत बार कर्ण का गुणगान होता है कि कर्ण का जन्म हुआ कवच और कुंडल के साथ, कितनी बड़ी बात है, कौन सा ऐसा बालक पैदा होता है, कितना महान है कर्ण, तो उसका इतिहास क्या है, क्यों कवच और कुंडल आए उसको, तो इसका बहुत बड़ा इतिहास है। पद्म पुराण में इस इतिहास का वर्णन हुआ है। पद्म पुराण में बताया गया है कि एक समय की बात थी जब ब्रह्मा जी ने एक पुत्री को जन्म दिया और उस पुत्री से आसक्त हो गए। उस समय ऐसे बताया गया है कि दरअसल वो ये ब्रह्मा नहीं थे जो अभी के ब्रह्मा हैं, वो जो ब्रह्मा थे उनके पांच सिर थे। तो वो ब्रह्मा अपनी ही पुत्री के पीछे भागने लगे, बड़े ही शर्मनाक अवस्था थी, सारे उनके अनुयायी खड़े थे, शिवजी खड़े थे, लेकिन ब्रह्मा जी आसक्त हो गए अपनी ही पुत्री से, क्योंकि अभी अभी स्त्री रूप को उन्होंने जन्म दिया था, ये शुरुआत की बात है। तो ये देखकर शिवजी को बड़ा क्रोध आया और शिवजी ने अपने त्रिशूल से उनका एक सर काट दिया गुस्से में आके, कि कैसे ब्रह्मा जी हैं इतने महान होकर भी एक स्त्री के पीछे ऐसे भाग रहे। वैसे शिवजी भी भागे थे, कृष्ण किसी को छोड़ते नहीं हैं। अगर किसी को अहंकार हो जाए, जैसे शिवजी ने सोचा, अरे ब्रह्मा होकर भाग रहा है तो फिर कृष्ण का तुम्हें भी दिखाऊंगा थोड़े समय बाद। तो फिर ऐसा भी समय आया जब शिवजी भाग रहे थे मोहिनी के पीछे और अपने सारे अनुयायियों के सामने, वो अनुयायी जिनको बड़ा बड़ा वैराग्य की शिक्षा शिवजी देते हैं, बताते हैं ये भौतिक जगत बेकार है, अनासक्त होना चाहिए, एकदम वैरागी रहना चाहिए, और उनके सामने वो भाग रहे हैं मोहिनी के पीछे। तो भगवान छोड़ते नहीं है किसी को, इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए। तो शिव जी ने क्रोध में उनका एक सर काट दिया, ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया, और ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो उनके शरीर से पसीना आने लगा और उस पसीने से एक असुर का जन्म हुआ जिसका नाम था स्वेदजा। स्वेद अर्थात पसीना, जा यानी जन्म लिया जिसने, स्वेदजा। तो ये असुर जो था, क्योंकि क्रोध आया ब्रह्मा जी को, उस क्रोध से उत्पन्न हुआ, और जब वो उत्पन्न हुआ तो उस समय ब्रह्मा जी और बहुत ज्यादा क्रोध में थे अपने रक्षण के प्रति, क्योंकि शिव जी ने अभी अभी एक सर काट दिया था, रक्षा करना चाहते। तो ऐसा वर्णन है पद्म पुराण में कि उस क्रोध के कारण स्वेदजा नामक जो असुर था उसके शरीर पर 1000 कवच आ गए क्रोध के कारण ब्रह्मा जी के। कवच अर्थात, कवच जानते हैं ना आप लोग, जब युद्ध किया जाता है तो शरीर पर लोहे के कवच पहने जाते हैं ताकि अगर कोई हृदय में तीर मारना चाहे तो तीर पहुंचे नहीं। वैसे अगर हम लोग भी देखें तो हम लोगों ने भी बहुत सारे कवच पहने हुए हैं, इसीलिए भगवान का हरि नाम जो है वो अंदर जा नहीं रहा है। सारे कवच, 1000 से ज्यादा कवच पहने हुए हैं, क्रोध के कवच। ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण ये उत्पन्न हुए थे, तो हमारे क्रोध, काम, मोह, मद, मत्सर्य के कवच हैं, पहने हुए हमने। इतना प्रभुपाद जैसे महान भक्त इतना ज्यादा इस हरि नाम के तीरों को छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे कवच बहुत स्ट्रांग हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, वो अंदर नहीं जाने देते हरि नाम को, क्योंकि पता है अंदर चले गए तो फिर हमारी भौतिक आसक्तियों की मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे ही असुर था, उसको 1000 कवच आ गए और वो भागने लगा शिव जी के पीछे, शिव जी को मारने के लिए। शिव जी ने अचानक देखा रे, तो शिव जी भी भागे भगवान श्री विष्णु के पास, श्री कृष्ण के पास। तो उनके पास आए और उन्होंने बताया कि आप रक्षा कीजिए। तो भगवान के दिव्य रक्त से एक असुर जन्मा जिसका नाम था रक्तजा, स्वेदजा और रक्तजा। वैसे असुर नहीं, सॉरी, असुर तो स्वेदजा था, रक्तजा जन्मा जो इसका वध करने वाला था। और पद्म पुराण बताता है कि दरअसल वो नर थे, नर और नारायण के नर। और उस समय इन दोनों का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और एक एक करके सारे कवच काट रहे थे जो रक्तजा थे, जो असल में नर है या अर्जुन है। तो एक एक करके सब उसके कवच काट रहे थे, लेकिन वो लड़े जा रहा था, युद्ध हो रहा था। और धीरे धीरे करके 999 कवच काट दिए, केवल एक कवच बचा उसका। तो जब उसने देखा कि केवल एक कवच बचा है, अब तो मैं मारा जाऊंगा, तो भागा सूर्य की ओर और सूर्य की शरण ली उसने जाकर। तो जिस समय सूर्य की शरण ली, रक्तजा अर्थात नर या अर्जुन ये चाहते थे कि जाकर मार दें, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। भगवान ने कहा नहीं नहीं, उसने सूर्य की शरण ली है, उसको रहने दो, मैं कुछ समय तक और उसको जीवित रहने दूंगा और फिर तुम बाद में मार देना। तो इसीलिए कर्ण को सूर्य पुत्र कहा जाता है। वैसे वो सूर्य पुत्र नहीं है, सूर्य की शरण ली थी उस असुर ने और फिर बाद में कुंती महारानी के गर्भ में उसको स्थानांतरित किया। तो इसीलिए जब कर्ण का जन्म हुआ तो वो उस कवच के साथ हुआ। तो वो कवच कोई दिव्य चीज नहीं थी, उस असुर की पूर्व आसुरी प्रवृत्ति का निशान था कवच। जो 999 कवच कट चुके थे, एक बाकी था, तो इसलिए उस असुर की वो आसुरी प्रवृत्ति के बचे कुछ निशान थे। वो लोग कहते हैं बहुत अच्छा था, कितना बढ़िया दिव्य चीज है, कवच के साथ कोई बच्चा पैदा नहीं होता, कर्ण हुआ, तो इसीलिए उसके साथ हुआ। और फिर आगे चलकर अर्जुन ने वध किया। एक और कथा आती है कर्ण के विषय में, जो बद्रीनाथ, जो बद्रीनाथ स्थान है बद्री, उसके स्थल महात्म्य में कही गई है। स्थल पुराण होता है हर स्थान का एक, तो उसका महात्म्य है, उसमें कहा गया है। उसमें बताया गया है कि एक समय एक बहुत बड़ा असुर था जिसका नाम था दुर्दम। उसने बहुत कड़ी तपस्या की, शिव जी का भक्त था लेकिन ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। आप सब जानते हैं कि जब ब्रह्मा जी असुर के सामने, किसी भी असुर के सामने प्रकट होते हैं, तो सबसे पहले असुर क्या कहते हैं, वो एक ही चीज मांगते हैं, ब्रह्मा जी मेरी मृत्यु ना हो। तो इस असुर ने भी कहा कि ब्रह्मा जी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हो नहीं सकता, मैं खुद अमर नहीं हूं, मेरी भी मृत्यु होने वाली है, आज नहीं तो कल, तो फिर मैं कैसे ये वरदान दे सकता हूं। देखिए, ब्रह्मा जी के वरदान देने और भगवान के वरदान देने में अंतर है। ब्रह्मा जी भले ही देवताओं के प्रमुख हैं, लेकिन उनकी भी सीमा है, सीमा के परे वो वरदान नहीं दे सकते। लेकिन भगवान, इनकी कोई सीमा नहीं है। हमने कभी नहीं सुना कि भगवान से किसी ने कोई वरदान मांगा और भगवान ने कहा हो कि मेरी सीमा है, मैं दे नहीं सकता। भगवान के लिए सब कुछ संभव है। तो फिर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने कहा मैं दे नहीं सकता, और कुछ मांगो। तो फिर उस समय उसने अपनी बहुत बुद्धि लड़ाई। ये असुर जो होते हैं बड़े बुद्धिमान होते हैं, लेकिन केवल एक ही तकलीफ है, अपनी बुद्धि का उपयोग गलत जगह पर करते हैं। विज्ञान के द्वारा खोजने का प्रयास करते हैं, भगवान को मारने का प्रयास करते हैं। तो उसने अपनी बुद्धि लगाई और उसे ब्रह्मा जी से कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, मुझे 1000 कवच दे दीजिए, मेरे शरीर पर 1000 कवच आ जाएं। और बहुत बुद्धिमान था वो, केवल कवच नहीं मांगा, और उसने कहा कि मेरी मृत्यु तब हो जब सारे कवच चले जाएं, लेकिन एक एक कवच कब जाए, उसने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को मेरा एक कवच काटना है, 1000 कवच मांगे थे, और कहा कि अगर एक कवच काटना है तो उसको 100 वर्ष तक तपस्या करनी चाहिए, और 100 वर्ष के बाद तपस्या करने के बाद जब वो मेरे साथ युद्ध करेगा तब मेरा एक कवच काट सकेगा। लेकिन और एक मांगा उसने कि जैसे ही वो मेरा एक कवच काटे उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बुद्धि है ना, एक कवच काटने के लिए 100 वर्ष तक तपस्या, और फिर जैसे ही एक कवच काटे तो वो मर जाए तो बचा क्या फिर? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो 100 साल तक तपस्या करके एक दिन में मरने की इच्छा करेगा? एक कवच काटो। और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, दे दिया। ब्रह्मा जी सोचते नहीं है दो कारणों से, एक तो जैसे गोपियां कहती हैं कि बुद्धि नहीं है, लेकिन वो गोपियों के लिए, वैसे बहुत बुद्धि है भगवान ब्रह्मा जी में, वो क्यों नहीं सोचते हैं? वो जानते हैं भगवान संभाल लेंगे, इसलिए वो जो बोलते हैं वो दे देते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं यहां नहीं मरूं, वहां नहीं मरूं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, मनुष्य से नहीं, जानवर से नहीं, सब दे दिया तथास्तु। क्योंकि उन्हें मालूम है, उन्हें पूरा विश्वास है कि भगवान की बुद्धि इन सारे असुरों से बहुत बड़ी है, इसलिए लोग कितना भी घुमा घुमा के कुछ कर ले भगवान घुमाकर मार ही देंगे इनको। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो अब तो ये जो असुर था इसके लिए तो मरना संभव ही नहीं, कौन मारेगा इसको? 100 वर्ष तपस्या करो, उसके बाद उसका एक कवच कटेगा, और कवच कटते व्यक्ति मर जाएगा, फिर क्या होगा? ऐसे 1000 व्यक्ति मरने, कौन मरेंगे ऐसे? और उसके साथ ही साथ इस असुर ने सारे ब्रह्मांड में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। जहां भी देखता कि कोई तपस्या कर रहा है तुरंत उसको मार देता, क्योंकि उसको डर था, उसको भय था कि ये तपस्या कर रहा है मुझे मारने के लिए। तो उसने वचन लिया था कि 100 वर्ष तक, तो 100 वर्ष तो छोड़ो, वो 2 दिन तपस्या नहीं करने देता था, जहां देखता कोई तपस्या कर रहा मार देता था। अपने सारे सैनिकों को भेज दिया सब जगह जाओ, जिसको देखो तपस्या करते हुए मार दो। ऐसा नहीं था कि सब लोग इसको मारने के लिए तपस्या कर रहे थे, सब लोग भगवान को प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि सब मुझे ही मारने के लिए तपस्या कर रहे, इसलिए मार डालो सबको। तो ऐसा आतंक फैला दिया इसने पूरा, और कोई मारने वाला नहीं। तब से सबने जाकर, सारे देवता भी हैरान हो गए कि ये कर क्या रहा है, सारी पृथ्वी में हंगामा मचा हुआ है। तो फिर सबने जाकर भगवान से प्रार्थना की कि बाप ही कुछ कीजिए, ब्रह्मा जी ने वचन दे दिया है तो इसको तो मारना बड़ा कठिन है, कौन मार सकता है, और आप ही कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने बड़े आराम से तथास्तु कहा था, ब्रह्मा जी ने सोचा नहीं था। वैसे ब्रह्मा जी सोचते नहीं है, हिरण्यकशिपु को जब दिया था, जब हिरण्यकशिपु का वध किया तो ब्रह्मा जी को बहुत डांटा था भगवान ने, अरे तुम ऐसे ही वर दे देते, जरा सोचा करो, बुद्धि लगाया करो, देखो तुम्हारी वजह से मुझे आधा मनुष्य और आधा जानवर बनना पड़ा। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है मैं इसका वध करूंगा। तो उस समय भगवान नर नारायण के रूप में बद्री में प्रकट हुए, दोनों नर और नारायण। और ऐसा बताया गया है भगवान ने वो स्थान क्यों चुना, उसका एक महत्व था। बद्रीनाथ में एक महत्व विशेषता है कि वहां एक दिन की तपस्या 100 वर्ष की तपस्या के बराबर मानी गई है, तो इसलिए वो बद्री में प्रकट हुए। देखिए भगवान की बुद्धि कितनी तेज चलती है, ये असुरों की बुद्धि बहुत तेज हो सकती है लेकिन भगवान से ज्यादा नहीं, क्योंकि वो बुद्धि दी किसने है? असुर भूल जाते हैं। असुरों और सुर में ये एक अंतर होता है, असुर भूल जाते हैं कि ये बुद्धि किसने दी है, ददामि बुद्धि योगम तम, और भक्त ये याद रखते हैं कि ये बुद्धि भगवान ने दी है बस। तो फिर भगवान प्रकट हुए बद्री में, जहां एक दिन की तपस्या 100 वर्ष की तपस्या के बराबर है, और फिर तपस्या करने लगे। और जैसे ही कहीं भी कोई तपस्या करता था, उसके जो गुप्तचर होते थे उस तुरंत उसको बता देते थे, देखो यहां वो व्यक्ति तपस्या, तो उन्हें पता चला कि बद्री में नर नारायण तपस्या करते, तुरंत समाचार भेजा कि देखो वहां पर वो तपस्या कर रहे थे, तुरंत आ गया वो, मार दूंगा इन लोगों को। तो उस समय एक व्यवस्था की भगवान ने। एक समय पर एक जब तक वो आया तब तक एक दिन की तपस्या पूरी हो चुकी थी, अर्थात 100 वर्ष की तपस्या हो गई थी। तो पहले नारायण उन्होंने कहा मैं युद्ध करता हूं और एक दिन तक मैं युद्ध करूंगा, तब तक तुम तपस्या करो। तो तब तक जो नर था अर्थात अर्जुन वो तपस्या करने लगे। तो वो एक दिन की तपस्या करते तब तक ये एक दिन युद्ध चलता। आज भी अगर आप लोग बद्री जाएंगे तो वहां पर वो स्थान है, चरण पहाड़ी करके स्थान है, जहां पर युद्ध किया था भगवान ने सहस्त्र कवच के साथ। ये दुर्दम का नाम, जब उसको 1000 कवच मिल गए तो सहस्त्र कवच हो गया। तो फिर युद्ध होगा तो एक दिन तक तुम तपस्या करना, उसके बाद भगवान युद्ध करेंगे, फिर युद्ध करके उसका 1 कवच काट देंगे और फिर उसके बाद मर जाएंगे। स्वाभाविक है मर जाएंगे, अर्थात एक मरने का। और फिर नर के लिए या दूसरे व्यक्ति के लिए ये था कि वो पहले आकर उनको पुनः उठाएगा, जागृत करेगा, फिर वो जाकर तपस्या करेंगे, तब तक ये लड़ेगा क्योंकि इसकी 100 वर्ष की तपस्या पूरी हो गई है। और फिर ये गिर जाएगा, फिर वो आकर उठाएंगे, ऐसे 100 दिन तक हम लोग युद्ध करेंगे। तो ऐसे करते 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 999 कवच काट दिए। और ये भी ऐसा था सहस्त्र कवच, ये सोच रहा था मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन जब देखा कि ये एक ही कवच बच गया है, सारे कवच काट दिए इन्होंने 999, तब घबरा गया। और तब फिर वो भागा वहां से और तब जाकर उसने सूर्य की शरण ली, ऐसा बताया गया है। तो इसीलिए ये भी एक कथा है कि फिर, और वो जो अंतिम बारी थी मारने की, पहले एक बार नारायण मार रहे थे, फिर नर, फिर नारायण, फिर नर, तो अंतिम नर मारने वाले थे अर्जुन, उनका चांस था मारने का। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि ठीक है तुम मारो। तो फिर अंतिम बार अर्जुन ने मारा उसे। तो ये इतिहास है और इतिहास का बहुत प्रभाव पड़ता है। हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अरे पहले का क्या फर्क पड़ता है, हमारे पहले के जीवन का क्या लाभ है, उसके क्या प्रभाव होने वाला है। दरअसल जब भी हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है तो हम भाग्य को दोष देते हैं। कर्ण ने भी दिया था, देखो मेरा कैसा भाग्य है, मैंने सब कुछ सीखा लेकिन सब भूल गया इत्यादि। तो लोग ज्यादातर भाग्य को दोष देते हैं, अपने कर्मों को नहीं देते। जब हम कर्म करते हैं उस समय हम भूल जाते हैं कि इसका क्या फल हमें मिलने वाला है, और जब वो फल आता है तो हम भाग्य को दोष देते हैं। भाग्य को दोष देना मतलब कृष्ण को दोष देना, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो बहुत अच्छा था इत्यादि इत्यादि। जैसे राजा चित्रकेतु की कथा, हम सब जानते हैं कि चित्रकेतु के कोई पुत्र नहीं था, बहुत सी रानियां थी, बड़े परेशान थे, नारद मुनि से प्रार्थना की, नहीं आप दे दीजिए दे दीजिए। फिर एक मुनि ने उस पर कृपा करके हर्ष शोक एक बालक को दे दिया। दरअसल आचार्य टिप्पणी में कहते हैं, स्थान पर लिखा है कि वो असली बालक नहीं था, मायावी बालक दिया था, क्योंकि उसके भाग्य में बालक था ही नहीं, केवल उसको ज्ञान देने के लिए किया गया था। तो खैर वो बालक दिया, फिर बालक की मृत्यु हो गई। तो जब बालक दिया राजा बहुत खुश थे, लेकिन जब मृत्यु हो गई तो फिर उस समय राजा और उसकी पत्नी भगवान को दोष देने लगे, भाग्य को दोष देने लगे, कह रहे अरे ऐसा कैसे, मैं छोटा सा बालक चला गया, संसार चलाना नहीं आता है, संसार बनाने वाले को ऐसा कोई होता है क्या, पिता के रहते हुए पुत्र की मृत्यु हो गई इत्यादि इत्यादि। तो दोष देने लगे। तो ऐसा होता है, ज्यादातर हम लोग भगवान को या भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन अपने कर्मों को कोई नहीं देता। कोई ये नहीं कहता कि हाँ ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म हैं, मैंने कुछ अपराध किया होगा, मैंने कुछ गलतियां की होंगी जिसका फल मैं भुगत रहा हूं। तो ऐसा हमें मानना चाहिए, हमारे जीवन में जितने भी कष्ट आते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि बाकी किसी के जीवन में इतने कष्ट नहीं है जितने मेरे जीवन में है, बाकी सब देखो सुखी है, आराम से भक्ति कर रहे हैं, जप करते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं, केवल मुझे ही ये तकलीफ हो रही है और मेरी जैसी तकलीफ किसी को नहीं है। और ये सत्य है, अपना दुख सबको बड़ा लगता है, दूसरे का दुख ज्यादा नहीं है, लेकिन अपना दुख सबसे बड़ा। देखो किसी के साथ ऐसा हुआ क्या? मेरे साथ ही ऐसा हुआ। और दूसरा कुछ कह सोचता है कि देखो किसी के साथ नहीं हुआ। तो अगर हमें बुद्धिमानी से काम लेना है तो हमें यह जानना चाहिए कि जब हम कर्म करें उसी समय सावधान रहें। हम कर्म ऐसे करें जो आगे चलकर हमारे लिए बोझा नहीं बने, जो आगे चलकर हमारे लिए दुख का कारण नहीं बने। कर्म करते हुए हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। जैसे लोगों की फिलॉसफी होती है, लोगों के सिद्धांत होते हैं कि जो करना है करो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। किसने देखा है आगे? तो फिर जब कष्ट भोगने पड़ते हैं, देखिए कभी कभी बालक बचपन में पैदा होता है, अपंग पैदा होता है, पांव नहीं है, हाथ नहीं है, अंधा है या कोई और चीज है, तो किस लिए होता है? अभी अभी जन्म हुआ है, उसने तो कुछ नहीं किया, तो लोग दोष देते हैं भगवान को। वो बालक भी बड़ा होकर भगवान को दोष देता है कि मुझे ऐसा पैदा किया। लेकिन जब उसने कार्य किए थे अपने पूर्व जन्म में, जब अपराध किए थे, पाप किए थे, तब उसने सोचा नहीं कि आगे चलकर मुझे ये फल भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए हम लोगों को कार्य करते हुए। अब जब हम ये चीज जानते हैं, हाँ अज्ञानी व्यक्ति पाप कर सकता है अज्ञान में, लेकिन भक्ति में आने के बाद, ज्ञान होने के बाद बड़ी सावधान रहना चाहिए और दोष अपने ही कर्मों को देना चाहिए। कई बार वो उदाहरण भरत का दिया है, जब भरत और शत्रुघ्न आए और जब उन्हें पता चला कि श्री राम जा चुके हैं वन में, और उसका कारण कैकई के दो वचन हैं, तो फिर उस समय पहले तो भरत को बहुत क्रोध आया, शत्रुघ्न को क्रोध आया, लेकिन अंत में भरत ने कहा, न मंथरस्य न च मातरस्य दोषो न राजन न च राघवस्य। किसी का दोष नहीं है, मंथरा का दोष नहीं है, कैकई का दोष नहीं है, राजा दशरथ का दोष नहीं है, और ना ही श्री राम का दोष है। तो फिर किसका दोष है? मेरे पापों का, मेरे कर्मों का। मत पाप एव आसीत वनम प्रवेशे रघुनंदनस्य। श्री राम के वन में जाने का एक ही कारण है, मेरे कर्म। तो देखिए कितना सुंदर भाव है ये। दोष तो सारी दुनिया दे रही थी मंथरा को, कैकई को, लेकिन भरत ने कहा कि नहीं, मेरे पापों के कारण गए। तो इसीलिए हम लोगों को बड़ा संभालना चाहिए कि हम जब कार्य करें तो ऐसे कार्य करें जिससे हमारा भविष्य खतरे में ना पड़े। इसीलिए भक्ति करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान के नामों का उच्चारण करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर इसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकें। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि हर चीज का इतिहास होता है और कर्ण का भी इतिहास है। और फिर आगे चलकर वो समय आया कर्ण के लिए जब कर्ण युद्ध कर रहे थे, और फिर ऐसा हुआ कि कर्ण को प्रमुख सेनापति बनाया गया, कोई थे नहीं, भीष्म बाणों की शैया पर थे, द्रोणाचार्य का वध हो चुका था। देखिए द्रोणाचार्य का जब वध हुआ तो अश्वत्थामा बहुत क्रोध में आ गए, और अश्वत्थामा ने तुरंत नारायण अस्त्र निकाल लिया और चला दिया अर्जुन के ऊपर। लेकिन नारायण अस्त्र को कुछ हुआ ही नहीं, अर्जुन को कुछ हुआ ही नहीं, नारायण अस्त्र विफल हो गया। अश्वत्थामा को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कोई साधारण अस्त्र नहीं था, स्वयं भगवान श्री नारायण का अस्त्र है, ये कभी विफल नहीं होता। तो अश्वत्थामा गए व्यास देव के पास और पूछने लगे कि ये कैसे हुआ, क्योंकि बहुत क्रोध में आ गए थे कि द्रोणाचार्य का वध कर दिया है इन्होंने धोखे से, मैं अभी नारायण अस्त्र से सबको समाप्त कर देता हूं। लेकिन कोई उसका प्रभाव नहीं हुआ। तो उन्होंने पूछा जाकर ये कैसे हुआ, तो व्यास देव ने बताया तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, अरे ये नारायण अस्त्र किसका है? नारायण का। और नारायण कौन है? वो बैठे हैं सामने, अर्जुन के सारथी बने हुए, और उनके ऊपर तुम नारायण अस्त्र चलाओगे तो क्या नारायण अस्त्र अपने मालिक के ऊपर प्रभाव करेगा, स्वामी के ऊपर प्रभाव करेगा? इतनी तो बुद्धि तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तो देखिए उस समय भी व्यास देव ने समझाया अश्वत्थामा को कि भगवान है, इनसे जीत नहीं सकते, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। तो फिर कर्ण बने प्रमुख सेनापति, और कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि देखो मैं अर्जुन का वध करना चाहता हूं, लेकिन अर्जुन के पास बहुत अच्छा सारथी है कृष्ण, तो मुझे वैसे ही सारथी चाहिए। दुर्योधन ने कहा तुम जिसको कहोगे हमारी सेना में से मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उन्होंने उस समय शाल्य नरेश को चुना कि ये मुझे चाहिए, वो बहुत दक्ष थे, लेकिन उनके लिए सारथी बनना ये तो एकदम अपमान की बात है कि वो सारथी बने। वैसे महाभारत में एक स्थान पर वर्णन है कि युद्ध के शुरुआत में ही ये पता था कि आगे चलकर शाल्य कर्ण के सारथी बनेंगे, क्योंकि जब दुर्योधन युद्ध के प्रारंभ के समय अपने गुरु के पास गए थे, भगवद गीता बोली गई, उसके बाद युधिष्ठिर गए थे भीष्म के पास, द्रोणाचार्य के पास और शाल्य के पास, और शाल्य से उन्होंने प्रार्थना की। शाल्य के पास क्यों गए थे? क्योंकि वो संबंधित थे उनसे, संबंधी थे उनके, माद्री के भाई हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे इतना निकट का संबंध है, आप कैसे यहां पर विरोध कर रहे हैं हमारा? तो शाल्य ने बड़ी माफी मांगी कि मैं क्या करूं, दुर्योधन ने धोखा दे दिया इत्यादि, मुझे वचन देना पड़ा, वैसे वो सत्य नहीं था। तो उस समय उन्होंने कहा कि ठीक है तुम कुछ वचन मांगो, मैं तुम्हें वचन दे देता हूं, जो तुम कहोगे मैं देता हूं, मांगो कुछ। तो फिर उस समय युधिष्ठिर ने शाल्य से मांगा कि आगे चलकर युद्ध में आप कर्ण के सारथी बनेंगे और उस समय आप हमारी मदद करना, कर्ण को निरुत्साही कर देना, कर्ण का सारा उत्साह समाप्त कर देना। तो शाल्य ने कहा था ठीक है मैं वचन देता हूं। और आगे चलकर जब ये अवस्था आई तो कर्ण ने सारथी के रूप में शाल्य को चुना, और उस समय बहुत विस्तार से वो वर्णन है, हम लोग जब महाभारत के अंत में पहुंचेंगे, अगर पहुंचे तो उस समय ये वर्णन करेंगे कैसे शाल्य और कर्ण के बीच में क्या संवाद हुआ। शाल्य हमेशा उसको निरुत्साही करते रहते थे, अरे देखो 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 अर्जुन कैसे युद्ध लड़ रहा है, ये क्षत्रिय है। और कर्ण कहता था अरे तुम मेरे सारथी हो कि उस तरफ से बोल रहे हो? फिर जब कुछ होता था तो देखो 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 तुम घबरा रहे हो क्या, डर रहे हो क्या? तो कर्ण कहते थे आप मेरे से क्यों ऐसे पूछ रहे हैं, नहीं लग रहा है मुझे तुम थोड़ा डर रहे, देखो अर्जुन आ गया सामने, अरे डरा रहे। तो ऐसे युद्ध में वो पूरा ऐसे किया करते थे। तो खैर शाल्य उनके सारथी थे, और जब कर्ण की मृत्यु का समय आया तो जैसे हमने बताया शुरुआत से जैसे ही शाल्य सारथी बने थे उनके बीच में बहुत वाद विवाद चलता रहता था, उसको बहुत बोलते रहते थे तुम ऐसे हो, तुमने ये किया है, तुम पापी हो, अधर्मी हो इत्यादि इत्यादि। और एक समय ऐसा हुआ जब उसकी मृत्यु निकट थी कि शाल्य और इनके बीच में बहुत झगड़ा हो गया, शाल्य ने कहा ये संभालो तुम्हारा रथ, मैं जा रहा हूं। शाल्य चले गए, अब वो खड़े हैं, अर्जुन से युद्ध हो रहा था उस समय दरअसल, और वैसे बताया गया कि अर्जुन से बहुत तेज युद्ध हो रहा था, लोगों को बड़ा आनंद आ रहा था युद्ध के देखकर, ऐसा हुआ था कि बाकी सारे लोगों ने युद्ध करना बंद कर दिया था, वो ये युद्ध देख रहे थे, क्योंकि कर्ण बहुत शक्तिशाली थे, बहुत अच्छी तरह से युद्ध कर रहे थे, कुशल थे, और वो बार बार अर्जुन के जो धनुष था उसकी जो प्रत्यंचा होती है उसको काट देते थे बार बार अपने तीरों से। अभी आप सोचिए कोई युद्ध कर रहा है और वो तीर चलाना चाहता है, उसकी वो रस्सी ही कट गई, वो प्रत्यंचा कट गई, अब वो लेगा, नया बांधेगा, टाइट करेगा, देखेगा ठीक है कि नहीं है, तब तक तो सारा मामला समाप्त हो जाएगा। लेकिन लोग ये देखकर बड़े आश्चर्य होते थे कि अर्जुन इतना दक्ष था कि जैसे ही एक तीर से और तीरों पे तीर, कर्ण ऐसे नहीं कि एक तीर चलाने के बाद 10 मिनट तक पानी वानी पीकर आकर बाद में दूसरा तीर चलाता था, ऐसा नहीं था। ऐसे बहुत तेजी से एक के पीछे एक, एक के पीछे एक तीर आते थे। लेकिन एक तीर से जब वो कट जाती थी प्रत्यंचा, दूसरा तीर जो पीछे आ रहा है उसके आने के पहले ही अर्जुन उस प्रत्यंचा को बांध दिया करता था, इतना दक्ष था वो। और लोग इसको देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। और सारे हालांकि तीर कर्ण चला रहे थे, रथ अर्जुन का पीछे जा रहा था, लेकिन लोग आनंद ले रहे थे अर्जुन को देखकर। वो उस समय उनका हीरो हो गया था अर्जुन, क्योंकि एकदम कट गया तो स्वाभाविक है समय उसको बिल्कुल समय नहीं लगता था, बिजली की तेजी से वो दूसरा लगा लेता, तीसरा चौथा पांचवा। लोग बड़े हैरान थे, जैसे कभी कभी क्रिकेट मैच चलता है ना तो लोग केवल वो तेंदुलकर क्या कर रहा है उतना ही देखना, बाकी कौन बॉलिंग कर रहा है कौन फील्डिंग कर रहा है कोई देखता नहीं, वो कहां गया कहां हिला कहां खड़ा है क्या है। तो ऐसे सबका ध्यान अर्जुन के ऊपर था, क्या कर रहा है अर्जुन, हीरो था वो। तो ऐसे चलता रहा और फिर युद्ध दोनों तरफ से हुआ। और अचानक जब शाल्य रथ को छोड़कर चले गए, कर्ण किसी तरह से प्रयास कर रहा था, फिर अचानक उसका रथ धस गया पृथ्वी में, बहुत सारी लाशें थी, खून था, खून से वो मिट्टी जो थी कीचड़ बन गई थी, और उन लाशों में उस कीचड़ में खून के इसका पहिया फंस गया। तो उसने फिर अपने अस्त्र शस्त्र जो थे धनुष बाण सब रख दिया और नीचे आया, क्योंकि शाल्य थे नहीं, वो तो चले गए थे, तुम जानो तुम्हारा काम, पहले से ही झगड़ा कर रहे थे। तो फिर वो नीचे आया और उसने उस समय देखा कि अर्जुन तीर चलाने के लिए तैयार था। तो उसने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, धर्म का पालन करो, क्या तुम धर्म के सिद्धांतों को भूल गए हो? देखो मैं निहत्ता हूं, मैं नीचे खड़ा हूं, रथ पर भी नहीं हूं और तुम रथ पर हो, और मैं तो निहत्ता हूं, कोई हथियार नहीं है और मेरा पहिया फंस गया है, मेरा सारथी नहीं है। ऐसी अवस्था में तुम्हारे लिए यह शोभा नहीं देता कि तुम तीर चलाओ, धर्म के सिद्धांतों का पालन करो। तो अर्जुन रुक गया, अर्जुन ने सोचा हाँ सही है, ये निहत्था है, इसका पहिया फंस गया है रथ का, सारथी नहीं है, हाथ में कोई तलवार नहीं है, हाथ में धनुष बाण नहीं है, नहीं चलाना चाहिए। अर्जुन रुक गए, लेकिन कृष्ण नहीं रुके। कृष्ण ने देखा अर्जुन रुक गए, कृष्ण अर्जुन को कहा तीर चलाओ। कर्ण ने कहा कैसे चला सकता आप, कैसे ये आदेश दे रहे हो? तो उस समय भगवान ने उससे कहा कि कर्ण तुम धार्मिक सिद्धांतों की बातें कर रहे हो, क्या तुम धार्मिक सिद्धांत उस समय भूल गए थे जब द्यूत क्रीड़ा हो रही थी, जब पांडवों के साथ धोखा किया जा रहा था, तब तुमने क्यों नहीं रोका, कहां गए थे तुम्हारे धार्मिक सिद्धांत? कर्ण कुछ कह नहीं पाया। फिर उन्होंने कहा तुमने ही आदेश दिया था ना दुशासन को, जाओ द्रौपदी को ले आओ, अब वो हमारी संपत्ति है और वैसे भी ये पांच पतियों वाली है, तो ये कोई सती स्त्री नहीं है, जाओ उसको ले आओ, खींच कर ले आओ उसको, तुमने ही आदेश दिया था ना, तब तुम्हारे धार्मिक सिद्धांत कहां गए थे? और फिर भगवान ने कहा कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का भी आदेश तुम्ही ने दिया था, कहां गए थे तुम्हारे धार्मिक सिद्धांत? क्या धर्म ये बतलाता है कि एक अबला स्त्री को सबके सामने उसके वस्त्रों को निकाल देना चाहिए? ये कौन से समाज की सभ्यता है? कहां गए थे तुम्हारे धार्मिक सिद्धांत? कर्ण कुछ कह नहीं पाया। फिर द्वैत वन, जहां पांडव बेचारे वन में थे, अपने ऐश्वर्य को प्रकट करने का सुझाव किसका था? तुम्हारा ही था कर्ण, कहां गए थे तुम्हारे धार्मिक सिद्धांत? कर्ण कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि यह सही था। और हर स्थान पर दुर्योधन का न केवल साथ दिया, लेकिन ऐसे आदेश दिए, ऐसे कार्य किए। और फिर कृष्ण ने याद दिलाया, क्या तुम भूल गए अभिमन्यु को? कितने सारे महारथियों ने मिलकर एक साथ मारा था, और उसको भी मारने का आदेश कर्ण तुमने ही दिया था, क्या तुम भूल गए? कहां गए थे तुम्हारे धार्मिक सिद्धांत, कहां था तुम्हारा धर्म? एक छोटा सा बालक, 16 साल का बालक, अकेला, और आप सारे महारथी एक साथ, कहां गए थे धार्मिक सिद्धांत? तब धर्म याद नहीं आया? देखिए ऐसा होता है, जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तब हमें धर्म याद नहीं आता, लेकिन जब हमारे साथ गलत होता है तब हमें सिद्धांत याद आते हैं, धर्म याद आता है, नैतिकता याद आती है, तब हम कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, तब भगवान याद आते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर कृष्ण ने कहा कि कहां गया तुम्हारे सिद्धांत, कहां थे तुम उस समय, क्यों नहीं रोका तुमने? दरअसल एक स्थान पर तो ऐसा भी वर्णन किया गया है कि जब जहर भी दिया पांडवों को लाक्षाग्रह, उस सब में कर्ण का हाथ था, जलाने का प्रयास किया, कर्ण नहीं जानता था, क्यों सहयोग किया? कहां थे तुम्हारे धर्म के सिद्धांत, कहां थे तुम क्षत्रिय? आज तुम अर्जुन को कह रहे हो कि क्षत्रिय की तरह लड़े, तब तुम क्यों नहीं लड़े, क्यों जलाने का प्रयास किया तुमने? कर्ण के पास कोई उत्तर नहीं था, कर्ण चुप हो गए, लेकिन कर्ण को वो सारे चीजें याद आने लगी, परशुराम का श्राप कि कैसे वो भूल जाएगा, कोई अस्त्र को याद करने का प्रयास किया, कुछ नहीं हो पाया उस समय। और फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा तीर चला, और क्योंकि अर्जुन ने भी इतना सब सुना, जैसे कर्ण, दरअसल भगवान ये दोहरा प्रभाव कर रहे थे, एक तरफ कर्ण को समझा रहे थे कि ये जो हो रहा है वो धर्म है, क्योंकि वैसे भी धर्म शास्त्रों के अनुसार आतताई को मारने में कोई देर नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर कोई चोर है, कोई डाकू है, उसको मारना है, तो क्या हम उसके सामने जाकर उसको कहेंगे कि भाई ठीक से खड़े हो जाओ, सीधे कहीं गोली इधर उधर नहीं चली जाए, मैं तुम्हें मारने वाला हूं? अरे उसको छुप के मारेंगे, पीछे से जहां दिखेगा गोली मारेंगे। हम लोग सुनते हैं आतंकवादियों को पकड़ा जाता है या मारा जाता है, तो क्या उनसे बात की जाती है पहले, क्या उनको धर्म सिखलाया जाता है? मार दिया जाता है क्योंकि आतंकवादी है, और कोई पुलिस वाले के ऊपर केस नहीं होता कि अरे तुमने आतंकवादी को पीछे से गोली मार दी, चलो तुम्हारे ऊपर, कोई नहीं। इसी तरह धर्म है, आतताइयों को मारने से कोई पाप नहीं लगता, तो ये सिखला रहे थे। तो दोहरा प्रभाव कर रहे थे कृष्ण, एक कर्ण को ये सिखला रहे थे कि यही धर्म है और तुम अधर्मी हो, और दूसरी ओर अर्जुन के हृदय में उस क्रोध को बढ़ा रहे थे, उन सारी चीजों को याद दिला के, लाक्षाग्रह, जहर देना, द्यूत क्रीड़ा, द्रौपदी का निर्वस्त्र करना, इस सारी चीजों को, फिर अर्जुन को क्रोध आ रहा था। और उसके बाद फिर कृष्ण ने कहा तीर चलाओ, मार दो इसको। और फिर उस समय अर्जुन ने अंजाली का शस्त्र था उसके पास, और उसमें पाशुपात अस्त्र को लगाकर फिर उसको छोड़ा और कर्ण का वध कर दिया। तो लोग जब इसको सुनते हैं तो बड़ा उनको करुणा आती है कि देखो कैसे मार दिया अर्जुन, इतना बड़ा महारथी, इतना बड़ा योद्धा, रुक नहीं सकता था थोड़ी देर? तो वो लोग कहते हैं कि अर्जुन जानता था कि अगर वो रुक गया तो वो मर जाएगा, इसलिए उसने मार दिया, गलत किया, अधर्म किया। तो इसलिए लोगों की सहानुभूति, क्योंकि अर्जुन, क्योंकि कर्ण मर गया, इसलिए लोगों की सहानुभूति वहां चली गई। जीवित रहता तो कोई सहानुभूति नहीं रहती, लेकिन अगर कर्ण और पांडवों के, अर्जुन के, दोनों के जीवन की तुलना करें तो किसने ज्यादा कष्ट सहे? कर्ण तो मर गया, लेकिन जीते जी कितने सारे कष्ट सहे? पांडवों ने सहे, वनवास में जाना, बचकर भागना, जलने से बचकर भागना, जहर खेलने से बचना, अपनी ही पत्नी को सारी शक्ति होते हुए, सबके सामने अपमानित होते हुए देखना, तो क्या नहीं सहा पांडवों ने। और फिर वन में भी कितने सारे कष्ट सहे होंगे। लेकिन हम लोग बात करते हैं केवल हाँ, क्योंकि वो मर गया इसलिए सारी सहानुभूति उसके पास, पांडवों के पास नहीं। जो व्यक्ति एक बार एक कोई व्यक्ति कथा सुना रहे थे कि कई बार लोग होते हैं वो मरने के बाद अपनी सारी संपत्ति दान दे देते हैं। एक बार एक व्यक्ति गया दूसरे व्यक्ति के पास, बोलते देखो लोग मुझे बहुत कंजूस कंजूस कहते हैं, जीवन भर कंजूस रहते हो, तो मैंने अभी लिख दिया है मेरा विल, क्या बोलते हैं उसको, मृत्यु पत्र, कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी सारी संपत्ति मैं दान कर दूंगा। तो व्यक्ति बोलने लगा मृत्यु के बाद तो वैसे भी वो संपत्ति तुम्हारी नहीं रहेगी, उसमें दान करके कौन सी बड़ी बात है। हाँ, अरे मृत्यु के बाद दान कर रहा है कोई है नहीं लेने वाला। तो उसने कहा कि तुम्हारा जो तुम्हारी जो कहानी है ये एक सुअर और एक गाय की कहानी के समान है। तो उसने कहा कौन सी कहानी। उसने कहा एक बार सुअर गाय के पास गया और कहने लगा कि देखो तुम्हारा लोग बहुत तुमसे बहुत मित्रता करते, तुमको बड़ा प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम थोड़ा दूध दे देती हो तुम्हारे शरीर से, लेकिन मैं देखो मुझे लोग काट कर खाते हैं, मेरे बाकी सारे शरीर के भी अंगों को खा लूं, मैं तो सारा शरीर दे देता हूं लेकिन कोई मेरा गुणगान नहीं करता, कोई प्रेम नहीं करता मुझसे, सब मुझे दूर दूर रखते हैं, क्या बात है। तो गाय ने कुछ सोचा और गाय ने कहा कि दरअसल मैं जो देती हूं वो जीते जी देती हूं, आप जो देते हो मरने के बाद देते हो, इसलिए कोई प्रेम नहीं करता आपसे। इसका अर्थ ये है कि हमें अपनी इच्छा से मरने के बाद, जैसे लोग बोलते हैं मरने के बाद कोई है नहीं वैसे भी लेने वाला, चोर लुटेरे ले जाएंगे नहीं तो गवर्नमेंट ले जाएगी, इसलिए कह देते हैं चलो हमने दान दे दिया मरने के बाद। ऐसे दान का क्या लाभ है, दान तो देना चाहिए कि जब आप जीवित हैं, क्योंकि जीवित दान देने में फिर वो हृदय में लगेगा ना कि अरे क्या है मेरी संपत्ति जा रही है। मरने के बाद कहां लगने वाला है, ना हृदय है ना शरीर है, मर गया उसके बाद कौन लेके जाता है क्या। तो इसीलिए यहां पर जो सारी सहानुभूति है लोगों की कर्ण के पास चली गई, क्योंकि कर्ण मर गए, हाय देखो बेचारा कृष्ण ने भी ऐसा किया, इसीलिए कृष्ण नरक में गए हैं ऐसा लोग कहते हैं, यही कारण है कृष्ण ने कितना अन्याय किया, कितना अधर्म किया, कहां धर्म था, कितना सारा गलती किया, तो इसीलिए कृष्ण को नरक में जाना पड़ा, अभी भी नरक में है, थोड़े समय और रहेंगे ऐसा लोग बोलते हैं। कितनी मूर्खता है ना लोगों की, अरे कृष्ण अगर नरक जाएंगे भी तो वो गोलोक हो जाएगा, वहां कौन सा नरक रहने वाला है, कृष्ण तो वृंदावन के बाहर जाते ही नहीं है, तो इतनी बुद्धि नहीं है लोगों की। तो खैर ये कर्ण के विषय में संक्षेप में हम लोगों ने चर्चा की कि किस प्रकार कर्ण का चरित्र बड़ा ही विवादास्पद है, लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा है लेकिन अगर भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ा अधर्मी था वो। हम लोग पहले महाभारत में चर्चा कर रहे थे, जब कर्ण का चर्चा प्रारंभ नहीं हुआ था, कि युधिष्ठिर महाराज वन में थे, अलग अलग स्थानों पर जा रहे थे, आपको याद होगा हम लोगों ने चर्चा की थी कि कई स्थानों पर युधिष्ठिर महाराज गए थे और लोमश ऋषि उनको उन स्थानों पर ले जा रहे थे, तीर्थ यात्रा उनकी चल रही थी। तो हम लोग वहां से अब जारी रखेंगे अपने महाभारत कथा को। समय क्या हुआ, टाइम 8:30, 8:30 8:20 आपकी घड़ी आ गई है कि जाना चाहते हो जल्दी। तो वहां से अपनी यात्रा जारी रखी, बहुत सुंदर यात्रा का वर्णन है, करते करते प्रभास क्षेत्र में भी आए थे जहां कृष्ण और बलराम से वे लोग मिले थे। उससे पहले महेंद्र पर्वत की ओर गए जहां पर परशुराम जी तपस्या करते हैं, और ऐसा वर्णन है कि परशुराम जी ने उनको दर्शन दिए थे युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि जब वो वहां गए वहां देखा बहुत सारे ऋषि हैं, परशुराम जी का क्षेत्र है, तो वहां पर एक बहुत बड़े ऋषि थे जिनसे उन्होंने परशुराम के विषय में पूछा और ये पूछा कि कब मैं दर्शन कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि होंगे कुछ समय में, और उतने समय में उन्होंने परशुराम जी का इतिहास युधिष्ठिर महाराज को बतलाया। संक्षेप में वो इस प्रकार है, उन्होंने बतलाया कि एक बहुत बड़े ऋषि थे जिनका नाम था ऋचिक ऋषि। उन्होंने विवाह किया गाधी महाराज की पुत्री सत्यवती से। वैसे गाधी महाराज बहुत बड़े राजा थे, फिर वो चले गए वन में, उनको एक पुत्री हुई, बहुत सुंदर पुत्री थी। तो ऋचिक ऋषि ने सोचा कि विवाह करना चाहिए, तो विवाह किया। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे कुल में एक परंपरा है कि जब कोई लड़का हमारे यहाँ कुल की लड़की से विवाह करता है तो उसको 1000 घोड़े देने होते हैं, और वो सारे घोड़े भूरे रंग के हों, ब्राउन कलर के, और उनके कान काले हों, ऐसे 1000 घोड़े देने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे ये तो मांग नहीं सकता, आप वैसे ही ऋषि हो, मतलब इधर उधर घूम रहे हो, आपको मुश्किल से खाने के लिए मिलता है, 1000 घोड़े कहां से लाओगे। लेकिन आपने मेरी पुत्री का हाथ मांगा है तो मैं मना भी नहीं कर सकता, तो इसलिए बड़ी दुविधा में हूं, आप ही बताइए क्या करूं। उस समय ऋचिक ऋषि ने कहा आप चिंता नहीं कीजिए, मैं आपको 1000 घोड़े लाकर दे दूंगा। पहले ऐसे अलग अलग कुलों में नियम थे, कभी कभी कुल में नियम होते थे कि राजा दिया करते थे, लेकिन इनके कुल के नियम थे कि जो विवाह करेगा वो देगा। तो फिर उन्होंने वरुण देव से प्रार्थना की, तो वरुण देव ने तुरंत 1000 घोड़े दे दिए और उन्होंने लाके राजा को दिए, ये आपके 1000 घोड़े, अब मैं आपकी पुत्री से विवाह करूंगा। तो फिर उनकी पुत्री से विवाह किया। उनकी पुत्री के पास एक बार भृगु मुनि आए, बहुत अच्छी सेवा की, भृगु मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया, पूछा क्या चाहिए, तुमने बहुत अच्छी सेवा की है। तो उसने कहा कि मैं अपने लिए एक पुत्र और अपनी माँ के लिए भी एक पुत्र चाहती हूँ, क्योंकि अब वहां पर कोई भी नहीं है, कोई संतान नहीं, तो एक मेरे लिए पुत्र एक मेरी माँ के लिए आप आशीर्वाद दीजिए, दोनों को पुत्र हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने दोनों से कहा कि तुम अपनी माँ से कहना कि उस स्थान पर एक वृक्ष है अश्वत्थ वृक्ष, वो उसको आलिंगन करें, और तुम औदुम्बर के वृक्ष को आलिंगन करना। और साथ ही साथ उन्होंने दो खाने के पात्र दिए, खाने की चीजें थी उसमें, कि ये तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारी माँ के लिए। खैर ये कहानी बहुत बड़ी है। आगे चलकर ये हुआ कि उनकी जो माँ थी उन्होंने सोचा कि क्योंकि पुत्री के लिए है तो कुछ विशेष दिया होगा, मेरे लिए कुछ इतना विशेष नहीं होगा, तो उन्होंने बदल दिया, जो पुत्री के लिए था वो खुद ले लिया और जो उनके लिए था वो पुत्री को दे दिया। बाद में जब भृगु मुनि को पता चला तो फिर उन्होंने कहा कि देखो ये तो उल्टा हो गया है, अब ऐसा होगा कि तुम्हारा जो पुत्र होगा, उन्होंने सत्यवती से कहा, वो क्षत्रिय होगा, तुम तो ब्राह्मण की पत्नी हो ऋचिक ऋषि की, लेकिन तुम्हारा जो पुत्र होगा वो क्षत्रिय होगा, क्षत्रियों की तरह कार्य करेगा, और जो तुम्हारी माँ का पुत्र होगा वो ब्राह्मण होगा, दरअसल उसको क्षत्रिय होना चाहिए लेकिन वो ब्राह्मण होगा, और तुम्हारा जो पुत्र है वो क्षत्रिय होगा और बहुत भयंकर क्षत्रिय होगा। तो फिर वो बड़ी घबरा गई और उन्होंने बहुत याचना की कि नहीं नहीं, तो उन्होंने कहा मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ये तो तुम्हारे ही कर्म है, तुमने कहा कम से कम आप थोड़ा बदल दीजिए, मेरा पुत्र नहीं, मेरे पुत्र का पुत्र क्षत्रिय हो जाए ठीक है, मेरा पुत्र नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु, तुम्हारे पुत्र का पुत्र क्षत्रिय होगा, तुम्हारा पुत्र नहीं होगा। तो फिर उनका पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ जमदाग्नि। तो जमदाग्नि ऋषि और उनके पुत्र हुए थे जो क्षत्रिय हुए, कौन थे, परशुराम जी। तो फिर जमदाग्नि ऋषि उनका भी विवाह हुआ, जमदाग्नि ऋषि का विवाह रेणुका देवी से हुआ और उनके 5 पुत्र हुए। तो उन पांच पुत्रों में सबसे छोटे थे परशुराम, बाकी चार पुत्र उनसे बड़े थे। और एक समय की बात है, रेणुका देवी आकर्षित हो गई एक गंधर्व के प्रति। फिर जब वापस आई तो जमदग्नि ऋषि ने कहा अपने एक एक पुत्र से, चारों पुत्रों से कहा कि तुम्हारी माता की हत्या कर दो, किसी ने नहीं की। फिर परशुराम जी आए, परशुराम जी को आदेश दिया अपनी माता की हत्या कर दो। उन्होंने तुरंत फरसा उठाया, काट दिया सर। बोला उनके जो भाई थे उनको तो उन्होंने वैसे ही सबको मार दिया। तो फिर बहुत प्रसन्न हो गए जमदग्नि ऋषि। तो उन्होंने कहा मांगो, क्या मांगते हो? तो परशुराम ने कहा इनको वापस जिंदा कर दो और ये भूल जाने चाहिए कि मैंने इन्हें मारा था, नहीं तो जीवन भर मुझे सुनना पड़ेगा। तो जमदग्नि ऋषि ने कहा ठीक है। तो फिर से वे जीवित हो गए। दरअसल लोग ये चर्चा करते कि कैसे परशुराम ने अपनी ही मां को मार दिया। उसका कारण ये था कि वो अपने पिता की शक्ति को जानते थे। वो जानते थे कि अगर मैं नहीं मारूंगा तो वैसे तो पिता मारने ही वाले हैं और मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने मार दिया तो फिर उनकी शक्ति से पुनर्जीवित हो सकते हैं। तो इसीलिए उनकी रक्षा करने के लिए उनका वध किया। तो ऐसे ये कथा वहां पर उन्होंने सुनी, परशुराम जी के दर्शन किए और फिर आगे चले, आगे स्थानों पर आगे चलकर प्रभास क्षेत्र में आए। प्रभास क्षेत्र में वहां पर सारे वृष्णि वंशियों को जब पता चला कि युधिष्ठिर महाराज आए हैं, चारों पांडव, चार थे उस समय, अर्जुन उस समय स्वर्ग में थे, तो फिर चारों आए हैं, द्रौपदी भी है, तो सब लोग आए मिलने के लिए, क्योंकि वो शहर में तो जा नहीं सकते थे, वनवास था, तो सब बाहर की तरफ आए उनसे मिलने के लिए। तो जितने भी लोगों ने देखा उनकी इस अवस्था को देखकर सब की आंखों में आंसू आ गए कि क्या अवस्था है युधिष्ठिर महाराज की। उन्होंने वो जटाएं बांध रखी हैं, वलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं। ये देखकर सारे वृष्णि वंशी रोने लगे और स्वयं बलराम जी को बहुत दुख हुआ। और बलराम जी कृष्ण से कहने लगे कि हे कृष्ण, मुझे ये देखकर लगता है कि पृथ्वी पर से जो नैतिकता है वो चली गई है, अच्छे व्यक्तियों का समय नहीं रहा। और देखो, जो अच्छा करता है उसको तो अच्छा मिलता नहीं और जो बुरा कार्य करता है वो भोग कर रहा है। ये युधिष्ठिर को देखो, इसने कब गलत कार्य किया? अरे इसके जैसे व्यक्ति को अगर ऐसे कपड़ों में घूमना पड़ रहा है, ऐसे कष्टों को सहन करना पड़ रहा है, तो फिर इस पृथ्वी पर क्या मूल्य रह गए हैं या नहीं? और दुर्योधन को देखो, वो आराम से सारी पृथ्वी का राज्य कर रहा है और वो अंधा धृतराष्ट्र, वो जाकर अपने पूर्वजों को क्या जवाब देगा? बलराम जी पूछने लगे, क्या जवाब देगा जाकर अपने पूर्वजों को जब वो पूछेंगे कि तुमने अपने निर्दोष भाई के पुत्रों को क्यों भेज दिया बाहर, क्यों निकाल दिया राज्य से, क्या जवाब देगा वो? तो ऐसे बहुत बलराम जी क्रोध में बोलने लगे कि ये बहुत गलत है, ये सही नहीं है। तो उस समय सात्यकी वहां पर थे और सात्यकी ने बलराम जी को शांत किया। उन्होंने कहा कि अभी ये समय नहीं है ये सब कहने का। कष्ट उन लोगों के ऊपर आता है जिनकी कोई रक्षा करने वाला नहीं होता, जिनको कोई सहयोग करने वाला नहीं होता, उनके ऊपर कष्ट आता है। उस व्यक्ति के ऊपर कष्ट नहीं आता जिनकी रक्षा करने वाले लोग होते हैं, और पांडवों की रक्षा करने के लिए हम सब हैं। तो इसलिए हमें अभी तैयारी करनी चाहिए, सारी सेना को तैयार करते हैं, अभी जाकर आक्रमण करेंगे हस्तिनापुर के ऊपर। तो बाकी सारे यादव भी थे, बोले हाँ 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 अभी करेंगे, आक्रमण करना चाहिए। सब लोग कृष्ण की ओर देख रहे थे। वो कृष्ण ने सोचा इतने सारे लोग बोल रहे हैं, मैं कैसे मना कर सकता हूं। तो कृष्ण ने भी कहा कि हाँ हाँ ये ठीक है, अभी जाकर दुर्योधन के ऊपर आक्रमण करके युधिष्ठिर का राज्य उनको वापस देना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर ने मना कर दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा वाक्य कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि मधुसूदन सब जानते हैं, कृष्ण के विषय में कह रहे थे कि वो सब जानते हैं और सही समय पर सही कार्य वो ही करेंगे। अर्थात युधिष्ठिर अपने लिए कोई श्रेय नहीं ले रहे थे कि मैं समय आने पर सबका वध कर दूंगा। युधिष्ठिर कह रहे थे सही समय आने पर वही सब कार्य करेंगे और वो सब जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और ये सही समय नहीं है। आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग वापस जाइए, जब सही समय आएगा मैं फिर से आप लोगों से मिलूंगा और हम लोग ये कार्य करेंगे। तो ऐसे शांत करके युधिष्ठिर महाराज ने सबको भेज दिया और फिर वो आगे अपनी यात्रा में चलने लगे। आगे चलते चलते एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर आए जहां पर चेवन ऋषि और सुकन्या की कथा लोमश ऋषि ने उन्हें सुनाई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथा है, बहुत सारी शिक्षाओं को हमें प्रदान करती है। कैसे अश्विन कुमार उस सुकन्या से मिले, फिर आगे चलकर कैसे चेवन ऋषि को अपना युवा अवस्था प्राप्त हुई, ये सारा वर्णन बहुत सुंदर किया गया है और उसके आगे उनकी आगे यात्रा का वर्णन। तो अगली बार युधिष्ठिर महाराज की यात्रा को समाप्त करेंगे, बहुत लंबी यात्रा है, 13 वर्ष तक यात्रा कर रहे, 12 वर्ष तक, तो अगर हम लोग बोलते रहे तो 12 वर्ष तक बोलते रहेंगे। तो इसीलिए अगली बार उस यात्रा को समाप्त करके आगे का वर्णन प्रयास करेंगे, थोड़ा बहुत उनकी यात्रा का वर्णन, चेवन ऋषि का वर्णन करेंगे, सुकन्या और चेवन ऋषि का। ये भी बहुत सुंदर वर्णन है, इंद्र के साथ युद्ध हुआ, चेवन ऋषि ने इंद्र को परास्त किया, ये बहुत विस्तार से वर्णन है। तो अगले मंगलवार को हम इसका वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।